आज की जो दुआ है, आज के पारे के थीम, बातों के जाल, और ख़ास तौर पे फिर सूरत अल अराफ में शैतान की धमकियों से बचने की है। और वो दुआ क्या है? वकुर रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी यखदुरून। ये सूरत मोमिनून की आयत 98 है, बिल्कुल आखिरी रुकू की आयतें हैं, उसमें से ये दुआ है। और दुआ करो कि परवरदिगार, मैं शयातीन की उकसाहटों से तेरी पनाह मांगता हूँ, बल्कि मेरे रब, मैं तो इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आए। अल्लाह ताला आपको मुझे वसवसों से बचाए। ये जो दुनिया में इस वक्त हर तरफ चिकनी चुपड़ी बातें चल रही हैं ना, ये हैं असल में वो बातें जिसके बदले में सुनते हुए हमें शैतान के वसवसों से पनाह मांगनी है। आइए शुरू करते हैं टेक्स्ट के एतबार से। पारा नंबर 8 जो है सूरत अलनाम की आयत नंबर 111 से शुरू होगा, और इसमें हम पूरी सूरत अलनाम भी करेंगे और फिर सूरत अल अराफ शुरू करके उसकी आयत नंबर 87 तक करेंगे। आउसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वलौ अन्नना नज़्ज़लना अलैहिमुल मलाइकत व कल्लमहुमुल मौता व खशरना अलैहिम कुल्ल शैइन कुबुला मा कानु लियुमिनु इल्ला यशा अल्लाह वलकिन अक्सरहुम यजहलून। आपको अगर थोड़ी सी भी अरबी जानती हैं आप, यानी पढ़ना आती है, यकीनन आती होगी, तो आप इसी एक आयत के अंदर जो बातों का जाल फैलाया गया है उसको देखें। और ख़ास तौर पे आज के दौर में तो आपको चारों तरफ ही ये बातें दिखेंगी। हर बंदा अपनी दुकान सजाने के लिए मीठी मीठी बातें करता है, कोई दीन के नाम पे तो कोई दुनिया के नाम पे, और कोई किसी तरह से तो कोई किसी तरह से। नबी सल्लम की जब दावत में तासीर हुई, जब आपकी दावत आम हुई, तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को जो पैगाम दिया था कि ये लोग जिनको आप सुनाना चाहते हैं ये सुन नहीं रहे, जिनको आप चाहते हैं कि ये बदल जाएं ये बदल नहीं रहे, तो आप इसकी फिक्र छोड़ दें। इनके पास तो मुर्दे भी आ जाएं और वो आपकी नबुवत की गवाही देने लग जाएं, तो ये लोग नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? इसकी वजह ये है कि ये बातों के जाल में आ चुके, ये बातों के सहर में आए हुए लोग हैं। आइए ज़रा सा इसका तर्जमा पढ़कर इस मौजू पे गौर व फिक्र करेंगे। पहला रुकू है आयत 111 से 121, हिदायत पा लेने की कोशिश करना। और अगर हम इनके पास फरिश्तों को भेज देते और इनसे मुर्दे बातें करने लग जाते, और हम तमाम मौजूदात को इनके पास इनकी आंखों के रूबरू लाकर जमा कर देते, तब भी ये लोग हरगिज़ ईमान न लाते। हाँ, अगर अल्लाह ही चाहे तो और बात है, लेकिन इनमें से ज़्यादा लोग जहालत की बातें करते हैं। क्या पता चला कि ना मानने के 100 बहाने। जिन दालों को नहीं गलना होता ना, आप उनको प्रेशर कुकर में भी डाल दें वो नहीं गलती। कुछ दिल भी इतने ही सख्त हो चुके होते हैं, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादी ज़ालिक की तरह। कुरान सुन सुनकर वो सुन्न हो चुके होते हैं, नेकियां कर कर के वो नेकियों के पहाड़ बन चुके होते हैं, और उनको लगता है कि हमें अब मज़ीद किसी नेकी की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ उस ख्याल को जो नबी के दिल में आता था दूर करवा दिया कि ये लोग नहीं मानेंगे। और आप खुद देख लीजिएगा, जिसको नहीं मानना होता ना वो नहीं मानता। बच्चा जब जिद पे आ जाता है ना, तो माँ जो मर्जी पापड़ बेल ले बच्चा नहीं मानता, और कोई इंसान भी नहीं मानता। जो ज़िद्दी लोग होते हैं ना, वो अपनी बात पे स्टबन होते हैं, वो अपनी बात पे जुड़ जाते हैं। तो नबी सल्लम जिन लोगों को दीन की दावत दे रहे थे उनके दिलों की हाल बताया, इसीलिए आगे फरमाया। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शयातीन पैदा किए थे, कुछ आदमी और कुछ जिन, जिनमें से बाज़ों को चिकनी चुपड़ी बातों का वसवसा डालते रहते थे ताकि इनको धोखे में डाल दें। और अगर अल्लाह ना चाहता तो ये ऐसे काम ना कर सकते। बस इन लोगों को जो कुछ इल्ज़ाम तराशी वो कर रहे हैं, आप इनको इसी में रहने दीजिए। और ताकि इनकी तरफ इन लोगों के कुलूब माइल हो जाएं जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, और ताकि इसको पसंद कर लें, और ताकि मुर्तकिब हो जाएं इन उमूर के जिनके वो मुर्तकिब होते थे। तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और फैसला करने वाले को तलाश करूं? हालांकि वो ऐसा है कि इसने किताबे कामिल तुम्हारे पास भेज दी है, इसके मजामीन खूब साफ साफ बयान किए गए हैं, और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात को यकीन के साथ जानते हैं कि ये आपके रब की तरफ से हक के साथ भेजी गई है। बस आप शुबा करने वालों में से ना हो। आपके रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है। इसके कलाम को कोई बदलने वाला नहीं, और वो खूब सुनने और जानने वाला है। और दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि अगर आप इनका कहना मानने लगें तो वो आपको अल्लाह की राह से बेराह कर दे। इसको हाईलाइट करें तो लिखे, मेजॉरिटी इज़ नॉट अथॉरिटी। चलो तुम इधर को हवा हो जिधर की, ये गलत असूल है। अक्सरियत के पीछे जाएंगे तो बहक जाएंगे। वो महज बेअसल ख्यालात पे चलते हैं और बिल्कुल क्यासी बातें करते हैं, यानी गैस वर्क कि इम्तिहान में ये पेपर आएगा वो आएगा। असल में ना किताब खोली, ना सिलेबस ख़रीदा, ना क्लासें अटेंड की, और जा रहे हैं बहुत बड़ा ज़िंदगी का इम्तिहान देने। बिल यकीन आपका रब इनको खूब जानता है जो इसकी राह से बेराह हो जाता है, और वो इनको भी खूब जानता है जो इसकी राह पर चलते हैं। बस जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया जाए इसमें से खाओ, या तुम इसके अहकाम पर ईमान रखते हो। और आखिर क्या वजह है कि तुम ऐसे जानवरों में से ना खाओ जिन पर अल्लाह ताला का नाम लिया गया हो, हालांकि अल्लाह ताला ने इन सब जानवरों की तफसील बता दी जिनको तुम पर हराम किया गया है, मगर वो भी जब तुम्हें सख्त ज़रूरत पड़ जाए तो हलाल है। और ये यकीनी बात है कि बहुत से लोग अपने ख्यालात पर बिला किसी सनद के यानी अथॉरिटी के गुमराह करते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को खूब जानता है। क्या पता चला कि तुम जाहरी गुनाह को भी छोड़ दो और बातनी गुनाह को भी छोड़ दो, बिला शुबा जो लोग गुनाह कर रहे हैं इनको इनके किए की अनकरीब सज़ा मिलेगी। और ऐसे जानवरों में से मत खाओ जिन पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो, ये काम नाफरमानी का है। और यकीनन शयातीन अपने दोस्तों के दिल में डालते हैं ताकि वो तुमसे जिदाल यानी झगड़ा करें, और अगर तुम इन लोगों की इताअत करने लगो तो यकीनन तुम मुशरिक हो जाओगे। कुछ एक लफ्ज़ भी कहने की ज़रूरत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे में भेजे गए थे उन्होंने अपनी पसंद का दीन बनाया हुआ था। उनकी एक आदत क्या थी कि वो जानवर जो खुद से गिर जाता उसको खा लेते, मुर्दार मईता, पीछे भी बात होगी उस पर। अल्लाह के नबी की शरीयत में ऐसा जानवर हराम था। हमने सूरह मायदा में पढ़ा ना, अल मुनखनिकत वल मौकूज़ा वल मुतरद्दी वन नतीहा व मा कल सबू। तो जब ये मिजाज सामने आया तो अल्लाह के नबी सल्लम ने उनको कहा कि ऐसा ना करो, तो उन्होंने एक शोशा छोड़ा था। और शोशा क्या था? देखो देखो ये मुसलमान कैसे हैं, जिस जानवर को अल्लाह मार दे यानी ऊपर से गिरा के मार दिया, छड़ी लग गई, गिर गया, गला घुट गया, बीमार हुआ तो मर गया, कहते हैं उसको ना खाओ, और खुद जिसको ज़िबा कर लेते हैं कहते हैं कि उसको खा लो। यानी अब ज़रा बात समझिए, आज ऐसी बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करके हमारी यूथ को बहकाया जा रहा है। ये मुसलमान इस्लाम इज़ नॉनसेंस, बात तो समझ नहीं आती, ऐसे क्यों वैसे क्यों। ये सारा रुकू जो आपने सुना है खाने और पीने की बातें हैं, मक्का वालों ने अल्लाह की शरीयत के मुकाबले में यानी जो इब्राहिम के ज़रिए उनको मिली हुई थी, क्योंकि वो खुद को इब्राहिम के फॉलोअर्स कहते थे, मुसलमान कहते थे, उस शरीयत के मुकाबले में एक और पैरेलल शरीयत बनाई हुई थी जो उनके ख़ानदान की रिवायतों और रस्मों से भरी हुई थी। अल्लाह ताला ने यहाँ यही बात करके बता दिया कि नबी ये ईमान नहीं लाएंगे, क्यों? कि जिसके दिल में खुद पसंदी हो, तासुब हो, किसी एक चीज़ को वो पसंद करके दूसरी चीज़ों को उसके क्राइटेरियन पे ले आए, वो नहीं मानता। अल्लाह सुब्हान तआला ने इन आयात में अल्लाह के नबी को एक दाईये दीन के तौर पर नसीहत कर दी कि आप इनके लिए जलना कुड़ना छोड़ दें, आप इनके लिए हिलकान ना करें अपनी जान, इनको ना सुनाएं, इनको मत बुलाया करें, इनको मत मैसेज किया करें, क्योंकि इन्होंने नहीं मानना। वजह क्या है कि इन्होंने अपना एक जहनी खाका बनाया हुआ है और उस खाके में अपनी पसंद के रंग भरते हैं। आज भी वो लोग आपकी पूरी कोशिश और दावत के बावजूद दीन पे नहीं आएंगे जिन्होंने अपने आप को किसी और चीज़ से जोड़ लिया। वो दुनिया की चीज़ों से जोड़ा हुआ है, उनके तो बेचारों के पास टाइम ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ईद की तैयारी करनी है, बाजारों के चक्कर भी हैं, दर्जियों के फेरे भी हैं। वो तो कहते हैं रमज़ान आता है इसलिए कि ईद की तैयारी कर लो, उनको ये नहीं पता कि रमज़ान ईद की नहीं आखिरत की तैयारी करने के लिए आता है। यहाँ सेल लगती है कपड़ों पे नहीं, नेकियों पे सेल लगती है। तो ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो, हाँ, औजुबिल्ला पढ़कर शैतान से दूर कर दो। ये दुनिया चूंकि इम्तिहान की है, याद रखिए कि सही बात करने वाले को भी यहाँ अल्फाज मिल जाते हैं और गलत बात कहने वाले को भी। इसलिए मोहब्बत से, प्यार से कहने के बाद उनके लिए अल्लाह से तो दुआ कर दो, लेकिन उनको छोड़ दो, क्योंकि आप जितनी बात करेंगे वो आगे से बहसों में पड़ेंगे। और अगर सारी बातों को जमा करूँ ना, तो जो सुनने को तैयार नहीं है उसको मत सुनाइए, जो आने को तैयार नहीं है उसको मत बुलाइए। ज़बीहा के अहकामात इतने खुल के वाजे आ गए थे, लेकिन उनको नहीं मानने, तो उन्होंने नहीं माने। तो अल्लाह ताला कहते हैं, जो लोग दलील को नहीं मानते वो कल अल्लाह को सामने मौजूद पाकर भी नहीं मानेंगे। आप खुशकिस्मत है अगर आप अल्लाह के कलाम से कोई बात सुनकर फ़ौरन कहती हैं, अच्छा मैं अमल करूँगी, अच्छा अल्लाह मुझे तौफीक देना, ये करना वो करना। वरना बहुत सारे लोग जो दिल में कुछ और रख कर बैठे होते हैं, उनको कुरान पढ़कर भी फ़ायदा नहीं होता। तो अल्लाह की सुन्नत है कि जो भटकना चाहता है अल्लाह उसको खूब भटकाता है, और जो हिदायत पे आना चाहता है अल्लाह ताला उसको हिदायत पे भी लाता है और फिर उसकी मदद भी करता है। तो अमल के क्या रवैये, क्या चीज़ें आपको इस रुकू में से मिली जिनसे हम अल्लाह की रज़ा को पाएं? पहली बात है कि हद से नहीं गुजरना, क्योंकि अल्लाह को हद से गुजरने वाले अच्छे नहीं लगते। फिर इल्म के बगैर गुमराह करने वालों में से नहीं होना, पुरफरेब बातें करने वालों से बच के रहना, लोगों की अक्सरियत के पीछे नहीं चलना, और अल्लाह ताला की आयात पर ईमान लाना है और हिदायत पानी है जहाँ से मिल जाए। याद रखे, हिदायत खोया हुआ बच्चा होता है, जब जहाँ से मिले उसको ले लीजिए। तासुब में पढ़कर किसी एक नाम, किसी एक गिरोह, किसी एक जमात से जुड़कर अगर आप अपनी हिदायत छोड़ देंगे, तो आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर यही बात समझ आती है, जिसको अल्लाह ने इस कलाम में पेश किया और सहाबा को रदी अल्लाह अन्हु बना दिया। आगे देखिए, रुकू नंबर 2 है, 122 से 129, 122 से 129। इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। अब अमन का न मैतन फ़ाहय ना हो, ऐसा शख्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने इसको ज़िंदा कर दिया, और हमने इसको एक ऐसा नूर दे दिया कि वो इसको लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है। कि ऐसा शख्स उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों से निकल ही नहीं पाता? इसी तरह काफिरों को इनके अमाल खुशनुमा मालूम होते हैं। यहाँ किसकी बात हो रही है? दिल की मुर्दगी। और दिल किसका मुर्दा होता है? जिसको रूह की ग़िज़ा नहीं मिलती। इधर अब आपको आगे और भी आयतें मिलेंगी कि जहाँ दिल के मुर्दा होने की बात है, तो लिख लीजिए कि जिस दिल में कुरान नहीं, वो दिल कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान में मुर्दे रहते हैं। दिल मुर्दा दिल नहीं, इसे ज़िंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्दे कोहन का चारा। दूसरी बात इस आयत में आपको दिखी कि वो लोगों के बीच में इस नूर को ले के फिरता है। इससे पता चलता है कि कुरान पढ़ने वाले, दीन सीखने वाले गोशा नशीन नहीं हो जाते, अपने ही नटशल में नहीं बंद होना चाहिए। लोगों में घूमिए फिरिए, लोग क्या कर रहे हैं, कुछ देखने के बहाने, कुछ सीखने के बहाने भी लोगों में जाइए, अपने हाल में मगन। दीनदार बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता। जो लोगों में चल फिर के अपने अमल से, कॉल से, अपनी बातों से लोगों को दीन देता है, ऐसा शख्स अंधेरों में रोशन चिराग की तरह है। अल्लाह मुझे आपको ऐसा ही बना दे। और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहाँ के रईसों ही को जराइम का मर्तकिब बनाया, ताकि वो लोग वहाँ फरेब करें, और वो लोग अपने ही साथ फरेब कर रहे हैं और इनको ज़रा भी खबर नहीं। और जब इनको कोई आयत पहुँचती है, तो यूँ कहते हैं कि हम हरगिज़ ईमान न लाएंगे जब तक कि हमको भी ऐसी ही चीज़ ना दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी जाती है। इस मौके को भी अल्लाह ताला खूब जानता है कि कहाँ वो अपनी पैगंबरी रखे, यानी अल्लाह को पता मैंने अपना पैगाम किसके ज़रिए पहुँचाना है। अनकरीब इन लोगों को जिन्होंने जुर्म किया है, अल्लाह के पास पहुँच कर ज़िल्लत पहुँचेगी और इनकी शरारतों के मुकाबले में सख्त सज़ा। तो जिस शख्स को अल्लाह ही रास्ते पर डालना चाहे, इसके सीने को इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है, अल्लाह मेरे आपके साथ ऐसा मामला कर दे, और जिसको बेराह देखना चाहे, इसके सीने को बहुत तंग और घुटा हुआ कर देता है। जैसे कोई आसमान पर चढ़ता है, इसी तरह अल्लाह ताला ईमान न लाने वालों पर नापाकी मुसल्लत कर देता है, और यही तेरे रब का सीधा रास्ता है। हमने नसीहत हासिल करने वालों के वास्ते इन आयात को साफ साफ बयान कर दिया, इन लोगों के वास्ते जिनके पास इनके रब के तरफ से सलामती का घर है, और अल्लाह मोहब्बत रखता है इनसे इनके आमाल की वजह से, اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا کہے گا اے جماعت جنات کی تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب کیا پتہ چلا صحابہ کرام روشنی کے متلاشی تھے آپ دیکھیں 122 آیت اور ابن عباس کے مطابق یہ آیت عمار بن یاسر اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی اور حضرت عمر اور ابو جہل کے بارے میں بھی صحابہ کون تھے نور کی روشنی میں چلنے والے کفار کون تھے اندھیروں کے شوقین تاریکیوں میں بھٹکنے والے آپ اور میں بچپن سے ایک نظم سنتے آئے کہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے لب پہ آتی سب سنتے کراچی کے بھی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اس آیت کو یاد کریے آج تک ہمیں تو اسکول والوں نے نہیں بتایا تھا کہ یہ پڑھتے کیوں ہیں ٹیون اچھی لگتی تھی قرآن پڑھا اور اب پڑھا رہے ہیں تو سمجھ آتا ہے اس آیت کا مطلب کیا شرع صدر ہوتا ہی قرآن پڑھ کے ہے سینہ کھلتا ہی قرآن پڑھ کے ہے تو آیت 125 پہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں کیا اسلام کے احکام سن کر میرا دل خوش ہوتا اسلام کے کون کون سے احکام یا قوانین ہیں جن پر میرا دل گھٹتا ہے کوئی عورتوں سے متعلق چیزیں تو نہیں کیا اللہ نے میرا دل اسلام کے لیے کھول دیا یا میں ابھی بھی تاویلیں پیش کرتی ہوں اور کتنے دورے قرآن کریں گے اب عمل کیجئے کیونکہ عمل بچائے گا ورنہ سن کر سن ہو جائیں گے اور میں یہاں ان محبت والے ساتھیوں کو کہوں گی جو پہلی دفعہ دورہ قرآن سن رہے ہیں اگر یہ قرآن اس وقت پہلی دفعہ آپ کے دل پہ دستک دے رہا ہے نا تو دروازہ کھول دیجیے کیونکہ ہدایت ایک غیور مہمان کی طرح بار بار نہیں نوک کرتی ایک آدھ دفعہ دل پہ نوک کرتی ہے اور اگر دروازہ نہ کھلے تو لوٹ جاتی ہے اور پھر دوبارہ بڑی مشکل سے آتی ہے اور ہدایت کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے باہر سے نہیں کوئی تڑپ لے کوئی چاہ لے آپ کی ہدایت کی دعائیں کر دے رو لے کھپ لے لیکن آپ کو ہدایت کب ملے گی جب آپ اندر سے دروازہ کھولیں آپ دیکھیں نا ڈور کوئی نوک کرتا ہے ٹک 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 جب تک آپ نہیں کھولیں گے وہ اندر آئے گا بس یہ جو دین سکھانے والے جو پیارے دوست آپ کی فرینڈس آپ کے لیے اتنا اہتمام کرنے والے آپ کو بلاتے ہیں نا یہ بالکل آپ کے دروازے پہ نوک ہے آپ کا مین ڈور باندھ وہ کریں کھولو کھولو میں آ گئی کھولو کھولو آ جاؤ سنو مجھے اندر آنے دو میرے ساتھ باہر چلو جب تک آپ نے اندر سے ٹرن آف نہیں کرنا یا ٹرن آن نہیں کرنا ہینڈل نہیں گھمانا تب تک بات نہیں بنے گی اس لیے اس سے پہلے کہ دل بالکل ہی بند ہو جائے زنگ آلود ہو جائے کھولے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چیزیں یوز نہیں کرتے ہم تو زنگ آ جاتا ہے رسٹ ہو جاتا ہے جیم ہو جاتی ہیں کچھ مشینیں بہت عرصہ جب تک استعمال نہ کریں بالکل اسی طرح باتوں کی اس دنیا کے اس جال میں پھنسنے سے زیادہ اللہ کے کلام کو سنیے آپ دیکھیے کہ اس پورے رکوع میں ہم نے دوبارہ ان لوگوں کی کہانیاں پڑھی ہیں یہ کیوں نہیں وہ کیوں نہیں ایسا کیوں نہیں وہ نہیں اللہ کہتے بس اب دعا کرو اللہ دل کھول دیں اب امن کا آنا میتن کیا آپ بھی اس قرآن سے پہلے مردہ نہیں تھی ابھی میرے فون میں ایک شیئرنگ ہے پتہ نہیں کن کی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے شاید 3-4 سال پہلے قرآن ملا یعنی انہوں نے کوئی دورہ قرآن ہمارے ساتھ سنا کہتے میری ایک دوست تھی تو وہ مجھے بلاتی تھی بہت بلاتی تھی لیکن میں غصہ کرتی تھی اور پھر کیا ہوا کہ 6 منتھس اگو ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی کہتی وہ میری دوست مجھے مستقل کچھ بھیجتی رہتی تھی اور میں اوور لک کرتی تھی کبھی کو کان میں آواز پڑی لیکن سنجیدگی سے نہیں سنتی تھی اور اب جب اللہ نے تنخواہ کیا تو اب قرآن دونوں ہاتھوں سے پکڑا کہہ رہی ہے پہلی دفعہ میں دورہ قرآن سنجیدگی سے کر رہی ہوں اور اب میں نے اپنی عمر آج کے دن سے گننی شروع کر دی ہے امام شافعی کہتے ہیں نا کہ انسان کی دو پیدائشیں ہیں ایک وہ جس دن دنیا میں آتا ہے اور ایک وہ جس دن اس کو دنیا میں آنے کا مقصد پتہ چلتا ہے जिनका ये पहला दौरा कुरान है, दिल पे जहां दस्तक हो फौरन के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जल्दी से दरवाजा खोल दे। हमें किसी का इंतजार होता है तो हम लॉक भी नहीं करते, खोल के दरवाजे में खड़े हो जाते हैं। बच्चा घर ना आए तो आप तो गेट पे आ देंगी। मियाँ साहब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, फोन की बेल हो रही, उठा नहीं रहे, गम पड़ जाता है। क्या हिदायत को भी कभी इतना वेलकम किया? अब अमन का न मई तन फाख यही ना हो। और अगर ये कुरान की धीमी धीमी रिम झिम रिम झिम, ठंडी ठंडी फुहार जैसी बारिश आपके दिल पे पड़ रही है ना, तो वो मुर्दगी खत्म हो रही है। जैसे खुश्क जमीन पे पहली बारिश पड़ती है बरसात की, तो खुशबू आती है। अगर ये कुरान इस वक्त आपके दिल की उस कैफियत के लिए वाकई एक बारिश की हैसियत बन रहा ना, तो इसको गनीमत जानिए। अल्लाह की नज़र में सिर्फ वो शख्स जिंदा है जिसके सामने हिदायत की रोशनी आई, इसको पकड़कर अपने रास्ते की रोशनी बना लिया। और इसके बरक्स अल्लाह के यहाँ मुर्दा वो है कि जिसके पास हिदायत आई, नॉक हुआ, टिक टिक टिक, दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर हूँ, मैं नॉक कर रही हूँ, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला और हिदायत पलट गई, वो महरूम है, वो बादल के अंधेरों में भटक रहा है। पेट्रोल ना हो तो गाड़ी का क्या फ़ायदा, गैस ना हो तो आपके इतने प्यारे ओवन का क्या फ़ायदा, बिजली ना हो तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या फ़ायदा। बस ये कुरान एक गैजेट है बस आपके मेरे लिए। अगर इसने आपके वो काम ना किए, अवन ने खाना ना पकाया, गैस से चूल्हा ना जला, इलेक्ट्रॉनिक्स में बिजली डली और कुछ काम ना हुआ, तो बेकार है, तो मेरा आपका कुरान पढ़ना पढ़ाना फ़ायदेमंद नहीं होगा। और आज वो लोग वाकई बातल में भिटक रहे हैं। आप कहते कि तो कुछ 7-8 घंटे पहले शूटिंग हुई अमेरिका के एक चर्च के स्कूल में, 27 साल की एक औरत जो पहले उसी चर्च में पढ़ के फारिग हो चुकी थी, उसने जाकर टीचर्स और 3 बच्चों को कत्ल कर दिया और बाद में पुलिस ने भी उसको मार दिया। और वजह क्या है? ट्रांसजेंडर। इतना फ्रस्ट्रेशन है अंदर कि खुद पता था उसको मैं मारी जाऊंगी, लेकिन मर गई, मार के मरी, मुर्दा दिल है। कुफर वाला दिल, कुरान के बगैर वाला दिल सूखी जमीन है, जिसके अंदर पानी जाएगा वहीं से सब्जा उगेगा। और जो मुर्दा आदमी होता है ना, उसके दिल में वहम और तासुबात इतने कि वो जाल बुनता रहता है और आखिर फिर दुनिया वालों की बातों के जाल में आ जाता है। आज हर बंदा अपना सामान बेच रहा है, मुझसे ले लो, मेरे पास ये है, कहीं नेट सर्विसेज हैं, कहीं आपको ई सर्विस, कहीं फ्रीलांसिंग है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। इन सारी आवाज़ों में गनीमत जानिए उस आवाज़ को जो आपको कुरान की तरफ बुलाती है। आप और मैं भी इस वक्त बैठे होते किसी बाजार में, कुछ ले और दे रहे होते, हम भी बैठे दुनिया में अपने पैसे की फिक्रें कर रहे होते हैं। किसको नहीं कमाना आता, अकल किसको नहीं मिली? लेकिन हकीकत यह है कि मुर्दा दिल वालों को सब कुछ मिल भी जाए ना, तो खुश कहाँ होते, चेहरे पे खुशी तो नहीं आती। और जिनके पास कुछ है नहीं है, खुशी बहुत है, चेहरे पे इत्मीनान बहुत है, सुकून बहुत है। इसकी वजह यह है कि मुतमईन है दिल। मैदे में खाना चला जाता है ना, तो फिर नहीं दिल करता और खाने को, और खाली पेट में से आवाज़ें आती हैं। कभी आपको अपने दिल के अंदर से हिदायत की तलब की आवाज़ आई? कभी आपका दिल हिदायत की वजह से एनेमिक हुआ? कभी आपका विटामिन डी कम हुआ, हेमोग्लोबिन कम हुई? बहुत देर चीज़ कम हो जाए ना, फिर उसकी तलब भी ख़त्म हो जाती है। मुर्दगी है दिलों पे, हम मुर्दा चीज़ों से दिल को बहलाना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, जो शख्स हिदायत के लिए अपना सीना खोल देता है, वो हर जकड़बंदी से आज़ाद हो जाता है। फिर लोगों की बातों में नहीं आता, वो करता है जो उसका दिल कहता है, वो उस चीज़ को लब्बैक कहता है जिस पे उसका दिल खुश हो रहा होता है। फिर उसके सामने सच्चाई आया, वो कहता है मान लो, ये बात सच है, ये दिल को दर्द लगती है, ये बात समझ में आती है। वो ये नहीं कहता, नहीं मैं तो नहीं, मेरा ताल्लुक उनसे नहीं, मैं जमात से नहीं, मैं ग्रुप से नहीं, मैं उस प्लेटफॉर्म से नहीं। उसके लिए ये सारे लफ्ज़ बेकार हैं। कल कब्र में जब जाएंगे ना, वो अंधेरी होगी, अगर तासुबात में पढ़कर इस किताब को छोड़कर जाएंगे। और एक छोटा सा पायलट फ्लेम ही सही आपकी मेरी कब्र में जलेगा इंशाल्लाह, अगर इस रोशनियों की किताब को थाम लिया और इसकी खिदमत करने लगे। अल्लाह ज़ाया नहीं करता, अल्लाह से ज़्यादा कदरदान कोई नहीं आपकी छोटी छोटी चीज़ों का। तो लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि आज दुआ करें कि अल्लाह हमारे दिलों को खोल दें, और जब अल्लाह इरादा कर लेगा तो फिर आपको भी इरादा करना पड़ेगा। अमल के नुक्ते नोट कर लीजिए इस रुकू में से, इस्लाम के लिए सीना खुल जाए इसकी दुआ करनी है, सही तर्ज़ अमल इख्तियार करने पे हिदायत मिलती है, इसलिए सही तर्ज़ अमल इख्तियार करना है। नसीहत कबूल करने वालों के लिए सलामती वाला घर है, इसलिए नसीहत पे कान लगाने हैं, हीले बहाने नहीं करने, नसीहत को कबूल करना है और एक साथ मिलकर काम करने वाले आखरत में भी इकट्ठे होंगे, इसलिए मिलकर दीन के फैलने के लिए कोशिश करनी है।